पढ़ो।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मविचार कर अपना चित्त थोड़ा भी निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे राम जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है तब तक आधी व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख नहीं दे सकते, तैसे ही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित है उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देहाभिमानी है और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए, उनको विषय उड़ा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्र को पवन उड़ा ले जाता है। सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक समान है। उसको यह विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वह परम पद पाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है, तैसे ही विचार से आत्म तत्व पाया जाता है। जिसको शास्त्र विचार से आत्म तत्व का बोध होता है, वह ज्ञानी कहता है और वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप है। अध्यात्म विद्या को विचार करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दूध से मथकर मक्खन निकाला जाता है, तैसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे चक्रवर्ती राज्य से आनंद और तृप्ति होती है, तैसे ही ज्ञानवान ब्रह्मानंद में इंद्रियों की इच्छा से रहित शोभता है और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्वज्ञान मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो, तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। हे राम जी, जब तीनों का इकट्ठा अभ्यास करोगे तब हृदय की अहम मम ग्रंथि टूट पड़ेगी। अनेक जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हृदय में स्थित हो रही है, सो अभ्यास योग से टूट पड़ेगी। इसके चलते बैठते खाते पीते सुनते सुंघते स्पर्श करते और जागते, इन तीनों का अभ्यास करो। वासना के त्याग से प्राण स्पंद रोका जाता है। जब प्राणों का स्पंद रोका तब चित्त अचित्त हो जाता है। एक प्राणों के रोकने से ही वासना क्षय हो जाती है, तब भी चित्त अचित्त हो जाता है। आत्मयोग से अथवा वासना के त्याग से आत्मतत्व प्रकाशेगा। इनमें जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, चाहे प्राणों को योग से रोको चाहे वासना का त्याग करो। प्राणायाम तब होता है जब गुरु की दी हुई युक्ति स्थित होती है और आसन और आहार के संयम से प्राणों का स्पंद रोका जाता है। जब सम्यक ज्ञान से जगत को अवास्तव जानता है तब वासना नहीं प्रवर्तती। जो जगत के आदि और अंत में स्थित है उसमें मन जब स्थित होता है तब वासना नहीं उपजती। जब व्यवहार में निस्संग और संसार की भावना से विवर्जित होता है और शरीर में असत बुद्धि होती है तब भी वासना नहीं प्रवर्तती, और जब विचार करके वासना क्षय हो तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। जैसे वायु के ठहरने से धूल नहीं उड़ती, तैसे ही वासना के क्षय हुए चित्त नहीं उपजता। जो प्राण स्पंद है वही चित्त स्पंद है। जब वासना फुरती है तब जगत ब्रह्म उपजता है। जैसे पवन से धूल उपजती है तैसे ही चित्त से वासना उपजती है। जब प्राण स्पंद ठहरता है तब चित्त भी ठहर जाता है। इससे यत्न करके प्राणस्पंद अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो, तब शांतिमान होगे। और जो यह उपाय न करो और दूसरे यत्न से चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत काल में आत्मपद को पाओगे। हे राम जी, इस युक्ति के बिना मन के जीतने का और कोई उपाय नहीं है। जैसे मतवाले हाथी को अंकुश बिना वश करने का उपाय और कोई नहीं, तैसे ही मन भी युक्ति बिना वश नहीं होता। वह युक्ति यह है कि संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार करना। इस उपाय से तत्वज्ञान, वासनाक्षय और प्राणों का स्पंद रोकना होता है। चित्त वश करने की यह परम युक्ति है। इससे चित्त शीघ्र ही जीता जाता है। जो इन उपायों का त्याग कर हट से मन वश किया चाहते हैं, वे क्या करते हैं? जैसे तम के नाश करने को दीपक जलावे तो नाश हो जाता है, और शस्त्रों से तम को काटे तो तम का नाश न होएगा, तैसे ही और उपायों से चित्त वश न होगा। इसके बिना जो और उपाय करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे मतवाला हाथी
जो लोग और उपाय करते सुखी होने के लिए, वे उपाय कर करके मर जाते हैं, डिग्रियां ले लेके मर जाते, धन कमा कमा के मर जाते, दुख नहीं मिटता है। एक ही सुंदर उपाय है, वासना को क्षय कर मन की चंचलता को मिटाए और ज्ञान पाले। वासना क्षय मनो नाश और बोध, ये सीधा रास्ता है। एकदम होटलों में भी खाना खाना, भटकना, वासना के अनुसार जीना, वो सुखी होने की इच्छा करना, हर्ष होगा लेकिन सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। वासना क्षय मनोनाश और बोध तीन ही साधन है पूर्णता के लिए। तो वासना के अनुसार जीवन ना हो, धर्म के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो, तो वासनावान लोग तो अपने लिए भी गुरु के लिए भी मुसीबत हो जाती। ये धरती व्यवस्था करे फिर भी ऐसे वासनावान मूर्ख लोग होते। तो वासना के अनुसार जैसा मन में आए ऐसा करने लगे, हमारे करने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो थोड़ा अपने में नियंत्रण रखें, संयम रखें, नहीं दौड़ धूप इधर से उधर। एक नालायक लोग होते, आवारा लोग होते, अभागे, वो पुण्य के बदले पाप ले जाते। गुरु की प्रसन्नता होती है शांति से रहें तो उपद्रव करके गुरु की नाराजगी लेके नालत ले जाते। तो वासनावान आदमी को सब जगह से घाटा ही पड़ता है। जो वासना रहित है, मर्यादा से जीते, उनको सब जगह से फायदा होता है। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम, ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले, लेकिन मूर्ख लोग वासना के अनुसार ही हूं इधर उधर दौड़े घूमे, तो गुरु के हृदय से भी नालत निकलती है। अभागे 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 तो अभागे ही हो जाएंगे फिर। आज्ञाकारी आज्ञाकारी, अच्छे अच्छे तो अच्छे हो जाते। वासना क्षय, अपनी वासना के अनुसार नहीं, मर्यादा के अनुसार जीना चाहिए। अपने कारण गुरु को तकलीफ हो, वातावरण में धूल उड़े, ऐसा काम क्यों करें? वासना क्षय मनोनाश और बोध, मन के गुलाम न बने, मन को एकाग्र करे, वासना को मिटाए और भगवान के तत्व का ज्ञान पाके साक्षात्कार हो जाए। एक साल में तो हो जाए, लेकिन जो मन के अनुसार भटकते रहते हैं आवारा लोग, उनको तो 10 साल में भी नहीं होता। जैसा अपने मन में आया ऐसे ही करने लगे, मुंह छुपाते रहे, ये करते रहे, जैसा अपने मन में आया ऐसे ही निर्णय करते। शास्त्र की मर्यादा से जिए तो कल्याण। नारायण हरि, एक के एक बात गुरु जी बार बार कहें फिर भी असर नहीं। ऐसे दुष्ट लोग होते ना, गुरु की बात की कोई कीमत ही नहीं रखते। ऐसे दुष्टों के संग से तो संत भी उब जाते, फिर एकांत में चले जाते, दर्शन नहीं देते। जाओ, अच्छे लोग भी उसके दुष्टों के कारण अच्छे लोगों का भी दर्शन सत्संग चला जाता है। जो आवारा टाइप के लोग होते हैं ना, वो बहुत उपद्रव करते। माँ बाप की भी नहीं माने, गुरु की भी नहीं माने, ऐसे लोगों की तो दुर्गति होती है। फिर मछलियां होती है, मेढक होती है, कुत्तियां बनती है, कुत्ते बन जाते हैं। वासनावान को तो क्या क्या दुख मिलते हैं, जब संयम से रहते मर्यादा से रहते तो कितने महान बन जाते। वो चींटी नहीं थी, कीड़ा था, एक नाली से दूसरे तरफ जा रहा था। कीड़े को ही वेदव्यास जी ने फिर कुशारू ऋषि मित्रा माँ के गर्भ से जन्म लिया, फिर मैत्रेय ऋषि बन गया। कीड़ा ने भी गुरु की आज्ञा मानी, वासना रहितों ने कब स्वीकार किया, तो कहां तो एक नाली का कीड़ा और कहां शिकारी के घर जन्म हुआ, फिर वहां जप मिला, फिर आगे बढ़ा। कुशारू ऋषि और मित्रा माँ के कोख से जन्मा, उसका नाम मैत्रेय पड़ा, जो 60,000 ऋषियों को उपदेश देते थे। मैत्रेय ऋषि पाराशर ऋषि के शिष्य बने, अपने पिता के चरणों तक पहुंचा दिया वेदव्यास जी ने मैत्रेय ऋषि। विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का आध्यात्मिक, उसमें मैत्री तो श्रोता है, पाराशर गुरु है। ऐसे मैत्रेय ऋषि कहीं पर सत्संग करते हो, हजारों ऋषि उनके सत्संग, कहां तो कीड़ा और कहां तो मैत्रेय ऋषि बन गए। कैसी सात्मा में योग्यता है, गुरु से तो ईमानदारी रखना चाहिए ना, जो हमारे तारण आ रहे उनसे बेईमानी क्यों करना। नारायण हरि, तो वासना क्षय मनोनाश और ज्ञान, तीन चीजें एक साथ कल्याण हो जाता, परम कल्याण। कीड़े में से मैत्री ऋषि बन गए, बोलो कितनी आत्मा में महान शक्तियां हैं। और मनमुख लोग तो राजा में से भी क्रिकेट बन जाते, जो मन की चाही करते वो राजा में से भी तुच्छ हो जाते, क्रिकेट हो जाते। हाँ पढ़ो।
हे राम जी, दुर्भागी जीवों को कहीं सुख नहीं होता। जिसने तीर्थ दान तप और देवताओं की पूजा, यह चारों साधन किए हैं और मन जीतने का उपाय नहीं किया, वह मृग की नाई भ्रमता फिरता है।
तीर्थ में भी आए, तप भी किया, दान भी किया, जप भी किया, लेकिन मन को वश नहीं किया। गुरु जी बोलते हैं ऐसे मन को वश करना चाहिए, मन के गुलाम बने तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है।
हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गुणों में चिरपर्यंत चलो, और जो कुछ शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़
संतों के कहने में और संतों के अनुभव में चीर पर्यंत चलो। ऐसा नहीं कि कपट बेईमान ये करके मन के दास हो जाओ, धर्मादि की चीजों का ऐसा वैसा करके पुण्य और बुद्धि नाश करो तो फिर रोग हावी हो जाता है। अनिष्ट इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं हो सकता है। जब आदमी कपट बेईमानी करता है धर्म में इधर उधर, तो इष्ट कमजोर हो जाता है, तो अनिष्ट हावी हो जाता है। इष्ट मजबूत होते फिर अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरी माँ का तबीयत खराब था, लेकिन इष्ट मजबूत हो गया, श्रद्धा दृढ़ हो गई, तो अनिष्ट हट गया। इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट हट जाता है, लेकिन बेईमानी कपट दोष दर्शन टोंट, गुरु के लिए गुरु की संस्था के लिए टोंट मारने से इष्ट नष्ट हो जाएगा, तो अनिष्ट जोर पकड़ता है, तो अनिष्ट बीमारी देके ले डूबता है, बीमारी करके ले डूबेगा। एक अनिष्ट अपने अनिष्ट प्रभाव में ले डूबेगा। इष्ट कमजोर हुआ तो अनिष्ट जोरदार होता है, फिर ले डूबता है। निर्णय बुद्धि भी ऐसी ही बनती है, विचार भी ऐसे ही बनते हैं। जब इष्ट कमजोर हो जाता तो बुद्धि भी मारी जाती है। और अनिष्ट होने का होता है ना, पहले तो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो फिर इधर उधर कावा दावा ये वो सब टोंटे हो, तो इष्ट नष्ट होने लगता है, क्षीण होने लगता है, अनिष्ट बढ़ता है, तो और बुद्धि ऐसी होती है, फिर से करते गिर सकता। तो गुरु की कृपाएं थोड़ा पकड़ लेते हैं कि चलो बेचारे संभल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अनिष्ट ले डूबता है। ऐसे कईयों को देखा, मन हावी हो गया तो अनिष्ट शुरू हो गया है, मन हावी हो गया तो अनिष्ट शुरू हो गया, अनिष्ट जोर मारता तब मन हावी होता है।
जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे।
हाँ, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब शास्त्र के अर्थ में मन लगाए उसके अनुसार जिए। पता है कि ये धोखा है तो धोखे वाला धोखा करता है, उसको पता है ये धोखा है और फिर भी वासना के वेग से, बेवकूफी के वेग से, टोंट के पाप के प्रभाव से बुद्धि मारी जाती। कुत्ता भी जिस घर का खाता है उसके लिए टोंट नहीं मारता, मारता है क्या? वो मालिक जूता मार दे, पत्थर मार दे, डंडा मार दे, कह रहा है फिर भी मालिक के लिए कुत्ता टोंट नहीं मारेगा।
और मन को राग द्वेष आदि से मौन करे तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांतरूप पद को प्राप्त होता है।
अजन्मा शिव, जो भगवान शिव तत्व का अनुभव करते हैं शंकर जी, वो ही शिव तत्व का अनुभव करने का अधिकारी, लेकिन मनमुख होने के कारण तुच्छ जीव हो जाता, फिर तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने में भी लाचार हो जाता, हकीम डॉक्टर इलाज का भी प्रभाव नहीं पड़ता, फिर गुरु की थोड़ी आज्ञा मानते तो जरा रहमत की किरण साथ में चलती तो थोड़ा उठता है, फिर फिसलते उठते फिसलते, ऐसा होता है। बड़ी सूक्ष्म सतर्क व्यवस्था है परमात्मा की।
हे राम जी, जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते उनको धिक्कार है।
धिक्कार है, जहाज और मल्ला और नाव होते हुए भी जो संसार सागर को नहीं तरते और अपना टोंट और कपट और इधर उधर, तो उनको धिक्कार है। करा कराया एक मनुष्य जीवन, करा कराया सब चौपट कर देते, उनको धिक्कार है। वशिष्ठ जी कहते तो गुरु में श्रद्धा होती, सद्बुद्धि होती तो आदमी भगवान के रास्ते चलता है, और जब बेईमान होता है तो मनमाना आचरण करता है।
जिस मनुष्य के शरीर
हमको तो गुरु जी ने बोला वहीं रहो तो 7 साल वहीं रहे, एक दिन भी नहीं रह सके ऐसी जगह थे, लेकिन गुरु जी ने कहा रहो तो रहे, दाढ़ी बाल कटाते तो गुरु की आज्ञा मानते, मांग के फिर आते। मनमुख लोग, टोंटबाज लोग, जिधर जैसा अच्छा लगा चल मेरे भैया, तो मन को अच्छा लगे ऐसा तो कीट पतंग भी करता रहता है, भाई को अच्छा लगे ऐसा करो, फलाना को अच्छा लगे ऐसा करो तो मरो फिर, कल्याण किसमें होगा? जो अच्छा है उधर को जाना चाहिए, जो अच्छा लगे वो मत करो, जो अच्छा है उधर को चलो चाहे फिर कठिनाई हो। अच्छे में अच्छा तो धर्म है, उपासना है, ज्ञान है, उधर चलना चाहिए ना, व्यवहार में अधर्म क्यों करें, कपट हेरा फेरी इधर की चीजें उधर, तो अधर्म है। अधर्म अच्छा लगता है तो अनिष्ट होने वाला है, धर्म अच्छा लगता है तो इष्ट मजबूत होगा, सीधी बात है। रसा टोंट का बदला कैसा मिला, जीवन और मौत के बीच झोंके खाते रहो, जरा सा बेवफाई का बदला कैसा मिलता है, ब्रह्मवेता की जरा सी सेवा करो तो बदला बहुत ऊंचा मिलता है, जरा सा गद्दारी करो तो बदला बहुत, कुदरत का ऐसा नियम, चपरासी को पानी का प्याला पिलाओ तो उतना ही बदला मिलेगा, राष्ट्रपति को पानी का प्याला पिलाए तो बदला और मिलेगा, चपरासी को थप्पड़ मारो तो बदला थोड़ा मिलेगा, राष्ट्रपति को थप्पड़ मारो तो बदला ऐसे ही मिलेगा पावर वाला है, बिल्कुल सीधी बात है। साधारण आदमी को जूता फेंको तो बदला थोड़ा ही मिलेगा, राष्ट्रपति के सामने जूता फेंका तो बदला तेज मिला। जब ब्रह्मवेता के लिए कपट और बेईमानी करते तो बदला ऐसा मिलता है तेज तरह, उनसे वफादार होते तो बदला ऐसा मिलता है ऊंचा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से ही हम भगवान और गुरु के नजीक हो जाते, अपनी मनमानी करने से भगवान और गुरु के दूर होके अनिष्ट का खेती बढ़ा देते। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, हाँ।
विचार सहित बुद्धि है वही जहाज है और संतरूपी मल्लाह है, इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते उनको धिक्कार है।
हाँ, बुद्धि तो नाव है, संत मल्लाह है, संसार रूपी समुद्र से तर जाए तो धन्यवाद है। अगर जो डूबता है बुद्धि भी है संत भी है शास्त्र भी है फिर भी जो डूबता है उनको धक्कार है। हाँ जी।
जिस पुरुष ने आत्मविचार में बुद्धि लगाई है वह तर जाता है, अन्यथा कोई नहीं तर सकता। जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है। हे राम जी, प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार समुद्र को देखो। जब तुम इसको जो का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होगे।
हे राम जी, तुम्हारे लिए संसार विनोद मात्र है, विचरण क्रीड़ा तुम्हारे हिल चाल और सहज स्वभाव से अपना और दूसरों का मंगल हो जाएगा, जीवन मुक्त आत्मा बन जाएंगे। फिर पुण्य नहीं पाप नहीं कर्तव्य नहीं, मुक्त निर्लेप नारायण अणु अणु ब्रह्मांडों में व्याप्त तो अपने आपा को अनुभव करोगे, ऐसा अपना वैभव प्रकट हो जाता है आत्म वैभव। कहां तो आत्म वैभव प्रकट करने की योग्यता है, उसी बुद्धि में हाड़ मांस रक्त ये वो कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया, वही बुद्धि में वही चिंतन में डॉक्टर बन गई, बैक्टीरिया का ज्ञान इकट्ठा किया, कोलेस्ट्रॉल फलाना देखना। जिस बुद्धि में ब्रह्म प्रकाशित हो उस बुद्धि में बैक्टीरिया का ज्ञान रख लिया, बस हो गए डॉक्टर। ब्लड बैक्टीरिया फलाना वात पीत कफ वंशो, उसी बुद्धि में कचरा भर गया। इसलिए रामकृष्ण बोलते थे डॉक्टरों को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, खोपड़ी में भर लिया ना बैक्टीरिया कोलेस्ट्रॉल हेमोग्लोबिन, डॉक्टरों को वकीलों को और दलालों को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। वकील और दलाल जानबूझ के झूठ बोलते हैं और डॉक्टर हृदय वो करते हैं और खोपड़ी में वही भरते, इसलिए उनको ब्रह्म साक्षात्कार होना। तो नाग महाशय ने अपने हॉस्पिटल बंद कर दिया, तो लोगों ने बोला क्या खाएगा, ऐसा क्या रामकृष्ण का सत्संग सुना। उसके बाप ने डांटा, अस्पताल बंद कर दिया, बोले जो काम करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती वो काम मैं नहीं करूंगा। तो बोले भूखे मरेगा क्या, मेढक खाएगा, तो मेढक मरा हुआ पड़ा था उठा के मुंह में रखा, लो आपकी आ गया तो लो ये मेढक खा लो। बाप ने देखा ये तो एकदम पक्का हो गया, वो तो लगे रहे तो उद्योदय तिथि आती है, 50 साल के बाद एक बार आती तिथि। दुर्गाचरण नाग नाम था, बाद में नाग महाशय रामकृष्ण का शिष्य मशहूर हो गया। 50 वर्ष में एक बार अर्धोदय तिथि आती है, अर्घ्योदय तिथि में देव भोग गांव उनके घर में रहते थे, लोगों ने बुला गंगा किनारे तो जाओ, सब छोड़ के आ गए, डॉक्टरी बंद कर दी, अर्घ्योदय तिथि को लोग गंगा नहाने जाते, कम से कम उधर तो जाओ। बोले अब तो गुरु की कृपा है, गंगा ही गंगा है। अरे बोले कैसे नास्तिक हो जाओ। बोले नास्तिक क्या हो जाए, गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएगी। अभी तो आज शाम है, चलते चलते गंगा जी को कल पहुंचेंगे, कल तक तो गंगा जी यहीं प्रकट हो सकती है। देव भोग गांव में, बंगाल में देव भोग गांव में वो घर में रहते थे, और सुबह सुबह देखा तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा है, और अपने प्रांगण में थंडर जल की थोड़ी धारा। वो तो अंदर कम रूम में थे, सोचा कि हम गंगा जी के पास तो बहुत गए, अब तो गुरु जी ने ज्ञान गंगा दिया, गुरु की आज्ञा मानते तो गंगा जी इधर ही आ जाएंगे। ऐसा संकल्प करके शांत हो गया। देव भोग गांव में आओ, प्रांगण में गंगा की धारा चल पड़ी। बड़े से लोग आए, देखा तो गंगा जल, हर गंगे हर गंगे हर गंगे आवाज आया, धारा बढ़ती गई बढ़ती गई। बंगाल में देव भोग गांव में दुर्गा चरण के प्रांगण में गंगा प्रकट हो गई। जो लोग नहीं जा सकते गंगा घाट पे मीलों दूर, उन्होंने वहीं गंगा जी का दर्शन कर लिया। डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ दी, गंगा प्रकट हो गई। दूर दूर से लोग आने लगे, ऐतिहासिक बात हो गई, यहां तक पहुंच गई। काली रामकृष्ण ने कहा डॉक्टर वकील और दलाल को ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, और उसकी प्रैक्टिस भी चलती थी बंगाल में, अच्छा नाम था डॉक्टर दुर्गाचरण, छोड़ दिया। फिर नाग महाश दुर्गाचरण दास नाम था उनका, दुर्गाचरण डॉक्टर दुर्गाचरण नाग, बाद में नाग महाशय के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा जी प्रकट कर लिया तो कितनी शक्तियां आ गई, कैसी शक्तियां छुपी है, वही मेढक काटना और बैक्टीरिया और ये और वो और कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम है, ये है बॉडी में, सारी दवा लेने का, उसी में खोपड़ी लगाई बुद्धि लगाई, क्या लिखना है, कहां तो ब्रह्म साक्षात्कार और कहां कोलेस्ट्रॉल, कहां फैट, हेमोग्लोबिन, बैक्टीरिया, फलाने बैक्टीरिया, फलाने बैक्टीरिया, दिंगने बैक्टीरिया, एक साधे सब साधे, वो तो छोड़ दिया, और बैक्टीरिया आएगी तुच्छ 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 में बुद्धि बिखर गई, मान छूट गया। छोटी छोटी बातों में जो बुद्धि को उलझा देते हैं या कपट में उलझाते थे तो वो महान चीज से बुद्धि नीचे हो जाती। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव नारायण व संत की व दास की लगी किनारे न। कई सच्चे हैं तो संयम नहीं, कई में संयम है तो सच्चाई नहीं, कपट मरे जा रहे। संयम तो है, संयम का गुण है, बड़ी बहादुरी है, लेकिन फिर कपट धोखा सत्यानाश कर दे। भले 50 ऐब है, संयम नहीं है, फलाना है ढींगना है, लेकिन गुरु से तो धोखा नहीं करता, वो आगे निकल जाएगा। धर्म से धोखा नहीं, गुरु से धोखा नहीं, तो वो आगे निकल जाएगा, चाहे बाकी 100 गलतियां हो, लेकिन वफादारी तो है, पूरा करो।
हे राम जी, ये जो विषय भोग है ये विश्रूप है, जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जैसे गारुड़ मंत्र पढ़ने वाले को सर्व दुख नहीं दे सकता, तैसे ही दुख नहीं दे सकते।
हाँ, विषय भोग तो जो उसको सेवेगा उसको ले डूबेंगे, लेकिन जो गारुड़ मंत्र पढ़ता है, विषय भोग तो सांप है, लेकिन गारुड़ मंत्र जो जानता है उसके लिए सांप क्या होता है। ऐसे जिसको आत्मज्ञान है उसके लिए विषय क्या होता है, ये क्या हो क्या होता है, महान, कितनी ऊंची उपलब्धि है। अकेले में रहे, साधन नहीं रहे तो सुरक्षित, गड़बड़ी के बीच रहे और ज्ञान की निष्ठा बने रहे तो कितनी ऊंची उपलब्धि है। श्री कृष्ण की ऐसी भव्य उपलब्धि, बड़े बड़े योगेश्वर योगियों से भी कृष्ण महायोगी। योगी तो अलग से रहे तब योगी टिका, लेकिन वो तो बराबर बीच विषयों के रहे, व्यवहार में, बाल बच्चे करने में, युद्ध में, सब में रहे, फिर भी ज्ञान कितना मजबूत, कितनी ऊंची स्थिति। ऊंची स्थिति का महत्व नहीं जानते मूर्ख लोग, तो कृष्ण में भी दोष देखते। ऊंची स्थिति कितनी प्रगाढ़ है, इतना नीचे आने के बाद भी तुम पर एक सेकंड में ऊपर पहुंच जाते, कितनी मजबूती महानता है, वो नहीं देखते। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, हाय सीता क्यों कर रहा था, मरो मूर्ख। इनकी तो ऊंची स्थिति है, हाय सीते करते तो क्या है। राम की स्थिति कितनी ऊंची, कृष्ण की स्थिति कितनी ऊंची है।